ये प्रातः क्लास चल रहा था 15-3-63 का दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी जो भागवत है सो भी अभी यहाँ इस समय की है और महाभारत की लड़ाई भी सामने देखी है वो भी इस समय की है। कुंभी पाक नरक भी कलयुग को कहा जाता है। काली देह भी कलयुग को कहा जाता है। इस काली देह में सभी गोते खाते रहते हैं क्योंकि पैदा ही विख से होते हैं। स्वर्ग में तो विख होता ही नहीं है। तो इनको जो ये विख याद आती है ना तो समझते हैं कि स्वर्ग में भी विख मिलती होगी। वो लोग पूछते हैं कि क्या स्वर्ग में भी विख मिलेगी। निमंत्रण दिया है भाई चलो बैकुंठ में चलो परंतु वहां विख तो नहीं मिलेगी। वहां विख की बात ही नहीं है क्योंकि स्वर्ग मान ही स्वर्ग है। विख कहा जाता है रावण राज्य को। तो इन पांच विकार रूपी रावण को तो कोई जानते ही नहीं है। ये तो काली देह में ये नाग रहते हैं। इनको पांच नाग कहा जाता है। देखो नाटक में भी इन नागों को कालिया नाग दिखाया है। अभी है इस संगम युग की बात। अभी तुम बच्चों के लिए सभी ज्ञान की बातें हैं। बाहर वालों के लिए तो कोई ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि वो तो काली देह में पड़े हुए हैं। पंद्रह तीन तिरसठ की वाणी का तीसरा पेज जो काली देह में पड़े हुए हैं वो खूब अच्छी तरह से नरक के गोते खाते रहते हैं। अगर कोई सन्यासी भी हैं बरोबर इसमें कोई शक नहीं है। वो सन्यास तो करते हैं परंतु पैदा तो फिर भी विख से होते हैं ना। तो जरूर पतित ही ठहरे और वो समझते भी हैं कि ये शरीर तो पतित है विख से पैदा हुआ है। तो बेचारे जाते हैं गंगा में उसको साफ करने के लिए। जब जब कोई बड़े दिन होते हैं तो गंगा के पास जाते हैं ना। कहते हैं आत्मा तो निर्लेप है बाकी ये शरीर बरोबर विकसित पैदा हुआ है। अरे बिख से पैदा हुआ है तो गंगा स्नान से कोई शुद्ध थोड़ा ही होगा। ऐसी तो कोई बात नहीं हो सकती है। फिर भी प्रकृति तो तमो प्रधान है ना, शरीर तो फिर भी तुमको वहां से ही मिलेंगे, वो ही बिख का बना हुआ है और सो भी एकदम तमो प्रधान है। तो बाप बैठकर कितना अच्छा समझाते हैं कि तुम सबको बोलो ये कलयुगी कालिद है और इसमें सब बिच्छू टिंडन पड़े हुए हैं, जो भी कुंभी पाक नरक है या रौरव नरक दिखलाते हैं तो रौरव नरक भी तो कोई चीज होगी ना, वो नदी तो नहीं बहती होगी जिसमें जाकर के पड़ेंगे। ऐसी कोई नदी है क्या? तुमने यहां कोई ऐसी नदी देखी है? कुछ भी नहीं है। ये तो यहां की बातें देखने की है। ये तो नदियों में पानी ही पानी होता है। इन नदियों में कोई थोड़े ही मनुष्य जाकर के बैल या गधे बनते हैं। देखा है कभी कोई नदियों में ऐसा रौरव नरक होता है क्या? और ये रौरव नरक तो कोई देखने की चीज नहीं है, ये कलयुग ही एक रौरव नरक है, ये कालिद है, इसमें ये सब बेचारे बहुत दुखी हैं, बहुत तड़पते रहते हैं और बहुत दुखी होते हैं। इसलिए वो जो अठियोगी सन्यासी हैं वो इस दुनिया से सन्यास करते हैं। तो बाबा बैठ करके समझाते हैं कि उनका तो हठयोग सन्यास है और ये तुम्हारा है राजयोग। अभी मैं आया हुआ हूं तुमको काली देह से निकालने के लिए। और इस काली देह से कृष्ण को भी तो निकालना पड़े ना, ये बड़ी समझने की बात है कि बरोबर भारत अनाथ था, देखो कल एक माई आई थी बोली कि हम अनाथ आश्रम को संभालने वाली हूं। अभी देखो अनाथ आश्रम तो कहा नहीं जाता है, जैसे गृहस्थ आश्रम ही कहा जाता है, पवित्र नहीं है तो भी गृहस्थ आश्रम। अभी ये अनाथ को आश्रम क्या कहेंगे? हाँ अनाथालय कहेंगे, सनाथालय और ये अनाथालय, ऐसे ही कहेंगे ना, अनाथ रहने वाले और सनाथ रहने वाले। तो अनाथ तो यहां रहते हैं। अभी देखो ये भारत अनाथ है, और सतयुग में सनात है। तो ये सभी बातें अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करनी है और बरोबर समझना है कि हम इस दुनिया से निकले हुए हैं। हाँ, बरोबर हम किनारे से निकले हुए हैं और अभी हम जा रहे हैं, परंतु फिर भी पिछाड़ी में पीछे नहीं बढ़ानी होती है। अभी बाप आकर दोनों को ही संन्यास कराते हैं, कहते हैं कि न तुम जाओ न वो जावे, और फिर भी रहना तो यहां ही है। तुम थोड़े ही पुरुषों को छोड़ करके बाहर में भागेंगी, पुरुष भी छोड़ करके जावे तो सब जंगल में ही जाकर के बैठेंगे, फिर शहर में तो कोई बैठेगा ही नहीं। तब बोलते हैं कि नहीं, तुम दोनों अगर पवित्र हो जाओ तो हम तुम्हारे लिए नया शहर बनाएंगे। अब बताओ कौन सा नया शहर बना देंगे? जरूर फिर इस शहर को स्वर्ग कहा जाएगा। तो दोनों के लिए कहते हैं कि बच्चे अभी दोनों पवित्र बनो, बस अगर स्त्रियों ने बंद कर दिया तो पुरुष क्या कर सकते हैं? तो भूलो नहीं, दोनों सनाथ बनो, और सनाथ बन के फिर स्वर्ग का दरवाजा खोल दो। यहां पुरुषों को भी समझाया जाता है, तुम भी स्त्री के उस दरबार में न जाओ, उस नरक के द्वार में न जाओ। अभी बाबा देखो कितना समझाते रहते हैं, फिर भी लिख देते हैं बाबा हम भूल से नरक में गिर गया। बाबा कहते हैं मुट्ठे तुम नरक में नहीं गिरो ना, नरक में गिरेंगे तो जैसे उस कुंभी पाक नरक में या काली देह में पड़ जाते हो। देखो ये कलयुगी तो काली देह है ना, और ये काली देह का नाम भी यहां ही रखेंगे। अब ये ऐसे तो नहीं कहेंगे यहां कोई कृष्ण है, वो कृष्ण उनमें बैठेगा या कोई काली देह में डूबेगा, वो तो अभी जान गए हैं कि ये कहां की बात कहां ले गए हैं। बंदर खाते हैं इन सब बातों को सोचकर। बाप कितना बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुम्हारी बुद्धि में आता है। ये सारी दुनिया के मनुष्य काली देह में पड़े हुए और बेचारे बहुत दुखी हैं, सभी निकलने तो चाहते हैं ना। तो बाप आकर इन सबको निकालते हैं और निकाल कर एक किनारे रख देते हैं। काली देह के किनारे से निकल अमृत देह में आ जाते हैं, फिर उसको अमृत देह ज्ञान अमृत कहा जाता है। कहते हैं कि वहां कैलाश पर्वत पर अमृत का सागर है, उसको क्या कहते हैं किसी ने कहा अमृत मंथन में पान मान सरोवर। हाँ याद आया, मान सरोवर कहते हैं। तो मान सरोवर यानी मनुष्य को ज्ञान सरोवर कहा जाता है। क्योंकि जरूर कोई मनुष्य है जो ज्ञान का सरोवर बन जाता है, क्योंकि ज्ञान का मंथन करते हैं ना। तो देखो कहां का नाम कहां जाकर के रखा है, और नाम रखा है ऊंचे पर्वतों के बीच, शिव और पार्वती को कितने ऊंचाई पर जाकर के बैठाया है। अब है तो ये ऊंची स्टेज की बात, तो शिव के मंदिर भी बहुत ऊंचाई पर बनाते हैं। वास्तव में ये शंकर और पार्वती का ये शिव शंकर इकट्ठा कर देते हैं, नहीं तो शिव का मंदिर तो सबसे ऊंचा बनाना चाहिए। बड़ी बड़ी पहाड़ी पर बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो है ऊंचे से ऊंचा रहने वाला। तो ये शायद हो सकता है कि आगे शिव का मंदिर ऊंचा बनाते होंगे, परंतु क्यों बनाते हैं? कौन जावेंगे वहां? इतना ऊंचा है इसलिए आजकल मंदिर शहरों में बनाए दिए। 15363 की वाणी का चौथा पेज। नहीं तो है तो वो ऊंचे से ऊंचा ना। जब शिव का मंदिर बनारस में है या घर घर में है तो पीछे पहाड़ों पर जाने की क्या दरकार है? परंतु ये तो अंधाधुंध सरकार है, ये राज तो तुम सब बच्चों को समझाया जाता है। सो भी किनको धारणा होती है किनको धारणा नहीं होती है। अब धारणा क्यों नहीं होती है? कुछ न कुछ खामियां तो हैं, क्योंकि कोई न कोई द्वार को याद करते रहते हैं। मुख्य है ये दुश्मन सबका। तो हमारे पास बहुत बच्चे हैं जो बेचारे उस द्वार को बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं, और नहीं किसको उस द्वार में गुटका डाल करके डालते हैं। भारत में तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, क्योंकि कन्या को कभी भी जो पवित्र कन्या है, क्योंकि गाय हुई तो है ना, अभी तुम लोग कन्याए हो, तुम तो द्वार खोलने वाली नहीं हो ना। तो देखो तुम कितनी गाई हुई हो। अधर कन्याएं, कुमारी कन्याएं, कितनी तुम्हारी पूजा होती है। ये पूजा क्यों होती है? पूजा का आधार क्या है? पूजा का आधार ही है पवित्रता। कि पवित्रता के कारण उनका फाटक बंद है, वो नरक का द्वार बंद है। तुम लोग का नरक का द्वार बंद है ना, तो तुम ही देखो पूजने लायक बनती हो। देवियों को कन्या के रूप में दिखाते हैं ना, तो तुम्हारे ही मंदिर बने होंगे। अगर तुम्हारा दरवाजा खुल जाए फिर तो तुम मंदिर में बैठने लायक नहीं बनेंगी, फिर तो गोता खाएंगी और रसातल में चली जाएंगी। अभी बाप बैठकर समझाते तो बहुत हैं और अच्छी तरह से समझाते हैं, कभी कभी दिल होती है कि ये डांस जाकर के दिल्ली और बॉम्बे में करें। बाबा को बहुत होता है, क्योंकि यहां डांस के शौकीन कोई एक अरबे कर है और वहां बंबई में तो हजारों आ जाते हैं, बहुत आ जाते हैं, ढेर के ढेर। और उनमें भी बहुत ऐसे हैं, और यहां तो है ही मधुबन, यहां तो विकार की कोई बात ही नहीं है। भले मनसा में तो बहुतों को आता होगा, परंतु कर्मेंद्रियों में तो नहीं जाना पड़े ना। ऐसे द्वार में जाना तो नहीं है ना, और द्वार में गिरा तो डूबी बेड़ी। देखो बाबा कितनी कड़ी कड़ी बातें बताते हैं। ब्रह्मा बाबा सभा में सुना सकते हैं, ऐसे मत समझो। बाबा यही मुरली वहां बड़ी बड़ी सभाओं में भी चलाते थे। देखो जब मुरली चलाता हूं तो हमको दिल्ली और बॉम्बे याद पड़ती है। चलो उधर बड़ी बड़ी सभाएं हैं, वहां बैठ करके ठोकूंगा अच्छी तरह से कि अरे भाई इस काली देह में मत कूदो। अभी ये काली देह बड़ी कड़ी है, इस काली देह को बिल्कुल कुंभी पाक नरक कहा जाता है। देखो तो इसके कारण भारत की क्या दशा हो गई है, परंतु कोई किसको पता थोड़े ही पड़ता है। कोई भी विद्वान, कोई भी आचार्य पंडित, इतने बड़े बड़े सन्यासी, उनको ये थोड़े ही मालूम पड़ता है कि भारत गिरा हुआ है और भारत अभी चट्ट खाते में है। नहीं, वो लोग तो अपने ही गुलछर्रे उड़ाते रहते हैं। ढेर पैसा मिलता है, महल बना करके बैठे हुए हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु का नाम, इनका कोई भी हिसाब किताब पूछने वाला नहीं है। बाप कितनी दफा बैठ करके बच्चों को डायरेक्शन देते हैं, परंतु समझते हैं कि बच्चे अभी सगीर हैं, अभी छोटे हैं, इनमें इतनी ज्ञान की ताकत नहीं है। ज्ञान की ताकत नहीं होने के कारण उछलते नहीं है, नहीं तो उनको तो भारत पर नजर आना चाहिए। ये जो श्री श्री 108 जगत गुरु का टाइटल लेकर बैठे हैं, ये हिरण्यकश्यप हैं। अपने सिर पर कितने बड़े बड़े टाइटल रखे हैं, और ये टाइटल कहां की बात है, ये तो बाप को डिफेम करते हैं। भारत का पूज्य सिर्फ बाप ही है, वो बाप सबका बाप है, और उनका टाइटल ये भिख से पैदा होने वाले ले लेते हैं। ये खुद ही काली देह में पड़े हुए पतित कहो तो भी काली देह तो कहो ना, पर वो लोग इतने बड़े बड़े टाइटल अपने ऊपर रख बैठे हैं। परंतु अभी ये बच्चे सगीरे हैं, कोई भी बच्चा अभी बालक नहीं बना हुआ है। ऐसे कोई भी मत समझे, भले बाबा कानपुर में जाते हैं या बॉम्बे में जाते हैं, तो ऐसे मत समझो, वो तो अभी माताओं को ये चैलेंज दे रहे हैं। ये तो शिव बाबा बैठकर कहते हैं कि माताओं को, और माताओं में भी अभी ताकत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है जो इतना बैठकर जोर से समझावे। वो ताकत चाहिए निर्भयता पाने की, एकदम निर्भय होकर बोले, और निर्भय भी हो। निर्भय होने की ताकत आवे, और निर्भय आना ये तो अपनी माताओं को और ही जास्ती होना चाहिए। पुरुष तो निर्भय बन जाते हैं और लड़ाई के मैदान में घुस जाते हैं। यहां तो तुम्हारी है माया की लड़ाई, वो पुरुष निर्भय होते हैं तो जंगल में यहां वहां कहां भी जाओ, निर्भय होते हैं। अब माताएं तो नहीं जावेंगी, क्यों नहीं जावेंगी, क्योंकि उनका तो चोला ही ऐसा है, तो वो इतनी निर्भय हो ललकार करें। ये भी समय चाहिए, जब तक बालक न बने। बालक को महात्मा कहा जाता है, तो जब तक ऐसी न बने तब तक ललकार भी कैसे करें। बिचारियां ही कहेंगे ابھی تک بیچاریاں ہیں. جب تک یہ نربھتا آوے, اچھا اور کیا سمجھاویں بچوں کو, کتنا سمجھاتے رہتے ہیں کہ بچے جا کر کے بھوں بھوں کر کے ان کیڑوں کو باہر نکالو, اس کالی دہ سے باہر نکال کر پھر ان کو بھوں بھوں کرو. بھوں بھوں تو ضرور کرنی چاہیے, وہ بھرمری بھوں بھوں نہیں کرتی ہوگی کیا؟ یہ تمہاری تو گیان کی بھرمری کا بھوں بھوں ہے. جب تک بھوں بھوں نہ کرے برتھ ناٹے پہنی ہے. بابا تو ایسے ہی کہیں گے, ارے کیوں, دیکھو مما برتھ پاؤنڈ بنتی ہے, اگر ان کے ہم جنس جا کر برتھ پینی بنے, داس داسیاں بنے, کتنی بندر کی بات ہو جاتی ہے. اور مما جانتی بھی ہے کہ بروبر یہ جا کر کے برتھ پینی بنیں گی, یعنی جو بھرمری ہیں بھوں بھوں کرتی ہے ان کی بات الگ, جو نہ بھوں بھوں کرتی ہیں تو کہیں گے ان کے آگے بھری ڈھوئیں گی. اچھا تم مٹھی کیا سنتی ہو, سنتی ہو یا نہیں سنتی ہو؟ اچھا باپ دادا کا میٹھی, مما کا میٹھے میٹھے سکیلے بچوں کو گڈ مارننگ, اوم شانتی.
جو بچہ بدھی ہے وہ کلیانکاری ہو سکتا ہے, یا جو سالم بدھی ہے وہ کلیانکاری ہو سکتا ہے؟ تو بچہ بدھی الٹا کرے گا یا سلٹا کرے گا؟ بچہ بدھی ہے وہ الٹا کرے گا, اور جو باپ ہے وہ سلٹا کرے
گا.
جو کام کرے گی شیو وہن سمجھ کر کے وہ الٹا کرے گی یا سلٹا کرے گی؟
وہ بھی تو ساکار بن دوارا کرتا ہے نا.
کرنے والی آتما کون ہے؟ جب کوئی ویکتی میں کوئی سول پرویش کرتی ہے تو دیکھا جاتا ہے نا یہ کون سی آتما کام کر رہی ہے,
بدھی کو پتا لگتا.
تو ایسے ہی یہاں بھی ہے, تین آتمائیں ہیں, شیو کی سول بھی ہے, رام کی سول بھی ہے, برہما کی سول بھی ہے, لیکن جو کرم کرتے ہیں کرم اندریوں کے دوارا وہ کرم کرنے والی آتمائیں الگ الگ ہیں یا ایک ہی ہیں یا سب سملت ہیں؟
الگ
الگ الگ ہیں.
لیکن جو اس کے پاس آنے والا یہ سمجھتا ہے کہ شیو بابا کا کام ہے, شیو بابا کے گود میں آئے گا, اس کے پاس جو آتی ہے جو ساکا میں پرویش کر جو کرم کر رہا ہے برہما ہے, اور اس میں سپرٹ اور شیو بھی ہے, تین مورتیاں ہیں, جس کے پاس جو آتی ہے وہ سمجھنا ہے تو شیو بابا کا ہے نا, شیو بابا کے گود میں ہے تو نا برہما کی.
بالکل تمہارے سمجھ کی بات ہے نا, لیکن مایا تم کو انٹرفیئر کر رہی ہے بار بار, تب تو تم پوچھ رہے ہو, سر کیا ہلا رہے
ہو؟
اسپشٹ کہا ہے مایا انٹرفیئر کرتی ہے تو بدھی کو گھماتی ہے, تو تم کو مایا انٹرفیئر کر رہی ہے اس لیے تم پوچھ رہے ہو بار بار.
تو کہہ رہے ہیں نا بابا,
क्या
तो कभी रामनवमी क्या कहते हैं,
कभी माया खींच ले जाती है,
कभी
बाप खींच लेता
है। बाबा कहाँ है?
हाँ हाँ,
अंग्रेज में एक मतलब बना एक सेइंग है बाबा, क्या कहना है, मैरिजेस आर मेड इन हेवन
है,
मैरिजेस आर मेड इन हेवन। अंग्रेज में एक सेइंग है मैरिजेस आर मेड इन हेवन, माना तो शादियां स्वर्ग में क्या माना स्वर्ग में जोड़ी बनती है, उसका अर्थ यही है स्वर्ग में ही जोड़ी बनते हैं मैरिज माना शादी एक कहा होते हैं वो उसका कोई कनेक्शन है ज्ञान में ज्ञान की सब
सब कहा बनती है जोड़ी
देखिए ऑफर चाहेंगे बाबा मैरिज साथ जोड़ी
अरे जोड़ियां कहां से बनना शुरू होती है
जरूर संगम युग से
संगम युग से ही हो रही है जिनके समान संस्कार है
दो हजार 36 के पहले बनना है
2036
के पहले बनना
है नहीं तो जोड़ियां यहाँ ज्ञान के आधार पर बनती है हद की बात नहीं है हाँ जी
सबका पूर्वज है सप्तर्मों की पूर्वज है ऐसी मतलब नवधर्मों में सूर्य वंश चंद्रवंशी इसका ऐसा ऐसा क्रम में आता है ना बाबा सूर्यवंशी का पूर्वज हो गया बाप साकार बाप
है
सूर्यवंशी का पूर्वज हो गया साकार बाप और चंद्रवंशी का दूसरे नंबर पूर्वज की बात आई सबकी पूर्वज अष्टदेव सभी धर्मों की पूर्वज अष्टदेव पूर्व अगर पहले जन्म लेने वाले पूर्वज ऐसा सूर्यवंशी का पूर्वज बाप और नवधर्मवंशी और चंद्रवंशी के दूसरे नंबर माना योगिनी माँ चंद्रवंशी का पूर्वज हो गया ऐसे तीसरी जो इस्लाम धर्म है तो इस्लाम धर्म की पूर्वज तीसरा नंबर होना चाहिए यमराज की पाठ बन जाए
ठीक है
तब तो ये ग्रहों की बात आते हैं बाबा शुक्र ग्रह को इस्लाम धर्म की बीज उसको शुक्र ग्रह कहा गया शुक्र ग्रह
ग्रह माना गर्भग्रस्त
है ना
वो एक नहीं है
हाँ बाबा जी बाबा
उसमें बाल बच्चे भी है
और
उसका पूर्वज पत्नी भी है
पूर्वज भी होता है
हाँ उसमें पूर्वज भी है
हाँ जी तब नवग्रहों जब नवग्रहों दिखाती है नवग्रहों की पूजा होती है ना बाबा नवग्रहों में एक को दिखाई दे भले उसमें सारी परिवार समाई हुई लेकिन एक को दिखाती है तब शुक्राचार्य जिसको इस्लाम धर्म की बीज कहा उसका भी पूर्वज जो तीसरा नंबर है यमराज वो जरूर शुक्राचार्य शुक्र ग्रह होना चाहिए ना
नहीं उसकी आत्मा है शुक्राचार्य शरीर भी है और आत्मा भी है
आत्मा तीसरे तीसरे नंबर हो सकता है
आत्मा जो है वो अष्टदेव में है
माना जब वो अंतिम जन्म में उसका प्रभाव में आती है ना बाबा इस्लाम तीसरा नंबर इस्लाम के प्रभाव में जरूर आती है क्योंकि माया किसी को छोड़ने वाला नहीं है तब वो लक्षण तो वो पूर्वज में भी रहता है ना जो काम इस्लामी बताते हैं बाबा वो लक्षण तीसरे नंबर की में जरूर होना है ना
हाँ है अगर नहीं है तो नंबर कैसे बनता है तीसरा नंबर दुनिया तो पूछेगी ना इसको अव्वल नंबर क्यों दे दिया इसको दूसरा नंबर क्यों दे दिया इसको तीसरा नंबर क्यों दे दिया हमारा नाम होना चाहिए तो टूटेंगे तभी तो नंबर मिलेगा
तो काम की अंश जब पूरा टूटा होते हैं कब नंबर मिलेगा
पूरा टूटा हुआ अधूरा टूटा हुआ नहीं कुछ न कुछ टूटा हुआ टूटेगा अब थोड़े समय के लिए टूटेगा या लंबे समय के लिए टूटेगा जो लंबे समय के लिए टूटेगा वो कमजोर आत्मा, और जो थोड़े समय के लिए टूटेगा फिर जुड़ जाएगा वो पावरफुल आत्मा। दो पंक्ति आई, आया छोटा पत्थर किसने दिया?
बुलाओ
बच्चे क्यों ले रहे?
बाबा एक हिंदी में बाबा ने नारायण से मुझे शंकर
रबा माता
उसमें शंका लेता है तब भूमि लक्ष्य ये कहना चाहेगा। जब नारायण से मुझे शंकर तब लक्ष्य क्या क्या लक्ष्य देना है? शंकर बनना नारायण
बाबा ने कई बार तीन लोग का चित्र दिखाया मुरली में। उस तीन लोग के चित्र में बताया सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उसके नीचे लक्ष्मी नारायण। तो शंकर ऊंचा हुआ या नीचा हुआ?
ऊंचा हुआ
बस। ऊंचा जिसका नाम शिव के साथ मिलाया गया, विष्णु का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया, ब्रह्मा का नाम शिव के साथ नहीं मिलाया गया, शंकर का नाम शिव के साथ मिलाया गया। तो ऊंचे थे ऊंचे कौन हुआ?
सबसे नारायण प्यार करना बताएगा
वो ठीक है। तो सबसे ऊंचा पुरुषार्थ, सबसे ऊंची प्राप्ति, सबसे ऊंचा लक्ष्य तो वही है।
उसका शिव नहीं है,
आपका लक्ष्य शंकर बनना है क्या?
नहीं बाबा
क्या
उपाय
है? हाँ तुम बता, पूछ रहे हम उसका जवाब दो। आपको शंकर बनना अच्छा लगता है?
शंकर में शिव प्रवेश है
प्रवेश
नहीं।
लेकिन बाबा ने क्या बोला? शंकर बनने का पुरुषार्थ नहीं करना है, इसको फॉलो करना है। इससे तो अच्छा ब्रह्मा को फॉलो करो। हाँ जी, कर्मों में शंकर को फॉलो नहीं करना है, डायरेक्शन को मानना है।
रावण की तीसरे होंगे वायु अग्नि जल ये सब कुछ, लेकिन इसमें बाबा तो धरणी को माता के रूप में दिखा दिए। जो अन्य है, जो अन्य तत्व है उनको पुरुष वरुण देव कहते हैं और अग्निदेव कहती है, अगर वायुदेव कहती है उसको पुरुष रूप में कौन दिखाया और धरणी को माँ के रूप में कौन दिखाया? तो पंच तत्व उसको धरणी को माँ कहते हैं ना, माँ के रूप में दिखाते हैं, लेकिन बाकी जो बचा हुआ तत्व है उसको वायुदेव कहते हैं, वायुदेव नहीं कहते, वरुण देव कहते हैं, अग्निदेव कहते हैं। तो पुरुष भी नाम पर क्यों बचा?
क्यों पृथ्वी दिव्याय नम कहते हैं क्या? पृथ्वी देवताय नम यही तो कहते हैं। पुत्र वाला का बड़का है या नहीं है? जो आप भक्ति मार्ग की बात कह रहे हैं तो भक्ति मार्ग का ही जवाब। भक्ति मार्ग में जगदम्बा को भी पुरुष रूप में उठाया हुआ है, क्योंकि वो दुष्टों का दलन करने वाली है। स्त्री चोले में इतनी पावर नहीं होती है कि दुष्टों का मुकाबला करे, वो रुद्रमाला का मांगा है। इसलिए और
अच्छी पढ़ाई के लिए हॉस्टल में दाखिल करना पड़ता है।
हाँ, बाबा बता रहे हैं कि सरेंडर करके पढ़ाई पढ़ाना अच्छा है बच्चों को, हॉस्टल में रखो, हॉस्टल में ही पढ़ाई पढ़े, उस संग का रंग जाती लगेगा, बाहरी वायुमंडल का असर नहीं लगेगा, वो पढ़ाई पढ़ना अच्छा है। घर में रह करके फिर स्कूल में जाना, फिर बाहरी दुनिया का संग का रंग लेना, से घाटा आ सकता है।
तो बात का कर लो गया हॉस्टल।
हाँ जी, घर का घर भी है, स्कूल का स्कूल भी है।
कोई कोई बच्चों में अपने इच्छा से अनिच्छा पत्र, कोई कोई कन्या में अपने इच्छा से अनिच्छा पत्र लिखकर चले जाते हैं,
अभी
मातृत्व नहीं ले जाते हैं, मातृत्व नहीं ले जाते हैं,
तो क्यों कैसे चले जाते हैं बिना माता पिता के सहयोग?
अपने इच्छा से
कैसे अकेली चली जाती है क्या? अकेले तो यहाँ जाने भी नहीं दिया जाता। तो माँ बाप को जब मालूम पड़ गया कि कन्या त्याग पत्र लिख करके जा रही है तो मना कर देना चाहिए, मैं नहीं ले जाता फिर वो। जैसे राजू भाई ने चालाकी की, बंगलौर में उनकी कन्या थी, राजू भाई गए बुलाने पर, पता चला वो तो छोड़ के जाना चाहती है त्याग पत्र लिख करके, तो चले आए, हम नहीं ले जाते। फिर भाई पहुंच गया तो पुलिस कोर्ट कचहरी की धमकी देने लगा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। अरे मैंने कहा ये सब करने की क्या दरकार है, त्याग पत्र लिख करके जाओ, लिख करके आए हो, लिख करके चले जाओ, क्यों मना करेंगे? तुम्हारी इच्छा है, अच्छा लगता है तो रखो, नहीं अच्छा लगता है तो न रखो। कन्या की इच्छा है तो रहे, नहीं इच्छा है तो न रहे। तो माँ बाप की इच्छा नहीं है तो कैसे चली गई घर में?
कन्या से अपनी इच्छा से
है?
कन्या अपनी इच्छा से
कहाँ चली गई? अरे कन्या आश्रम को छोड़ के चली गई तो कहाँ चली गई?
घर गई बाबा,
लौकिक माँ बाप के पास चली गई ना। लौकिक माँ बाप ने क्यों रखा अगर उनकी इच्छा नहीं है? इच्छा है तभी तो रखा, इच्छा नहीं होती, मोह नहीं होता, लगाव नहीं होता तो क्यों रखते?
मोह नहीं लगते, नहीं होता
तो अभी तक नहीं होगा। बाबा आदि सनातना देवी देवता से पति पक्के
है,
इसमें लक्ष्मी आता है बाबा, क्योंकि लक्ष्मी को जब पुरुष शरीर देती है द्वापर युग से, जब पुरुष शरीर लेती है तब तो वो सन्यासी रहती है, तब
वादी सनातना
देवी
कहना
चाहिए।
ठीक बात है, जो पक्के हैं वो सूर्य के साथ ही रहेंगे या चंद्रमा के साथ रहेंगे?
और जो कन्वर्ट वाले कन्वर्ट होने वाला वो ये बात नहीं लागू होता।
सावित्री माता जी शाम शिवराव भाई के तीन बच्चों से बाहर से आने वाले ज्ञान के भाई लोग पूछ रहे हैं, अपने ज्ञान में चलने वाले भाई लोग पूछ रहे हैं, किससे? सावित्री माता शाम शिवराव के बच्चों से क्या पूछ रहे हैं कि आप लोग पूरा खेती बेच दिया, आप लोगों का जिंदगी कैसे चलेगी? अब ये पूछने वाले ज्ञान के विरोधी होंगे या ज्ञान में चलने वाले होंगे, बताओ कौन है वो? है भले यहाँ क्लास में भी आकर के बैठ जाते हैं, लेकिन इससे क्या साबित होता है? वो शाम शिवराव के बच्चों को उखाड़ना चाहते हैं, श्याम शिवराव के विरोध में भड़काना चाहते हैं या नहीं भड़काना चाहते हैं? पंपिंग कर रहे हैं, तुम अपने माँ बाप से लड़ाई लड़ जाओ। वो ज्ञान चल रहे हैं क्या? वो लोग जो भड़काते हैं, आप लोगों का जिंदगी कैसे चलेगी? नीचे सुबह से शाम तक जो सर्विसिंग चल रही है मोटर सफाई की, उसमें कितना कमाई आती है? तीन बेटे ये बातें सुनकर चिंता कर रहे हैं। उन बच्चों से ऐसे नहीं बोलना है, वो बच्चे सामने आए तब तो हम उन्हें समझाए, उनका नाम तो इसमें लिखा ही नहीं कि कौन बच्चे ऐसा समझाते हैं। ज्ञान में चलने वाले क्या मुखौटा चढ़ाया हुआ है? हम ज्ञान में चलने वाले हैं, अब कर्म ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अरे बच्चों को उठाना चाहिए या और उनको विरोधी बनाना चाहिए? अभी बाप गुप्त है तो तुम डिसर्विस कर रहे हो, दो चार साल के बाद बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा तो वो बच्चे तुम्हारे मुंह पे थूकेंगे या तुम्हारी सराहना करेंगे तुमने हमको उखाड़ा माँ बाप के विरुद्ध? क्या करेंगे?
तो
नीचे नीचे काम करते हैं ज्ञान में चलने वाले। ओम
अनिश्चय चक्र
36 से चल रहा है। अनिश्चय चक्र
36 से चल रहा है।
36 से अनिश्चय का चक्र चल रहा है।
ऐसा बोला, ऐसा बोला है। 76 से नहीं
है,
76 से नहीं, चक्र से नहीं, 36 से अनिश्चय का चक्र चल रहा है।
अनिश्चय का चक्र है
36
से चल रहा है,
ऐसा बोला है।
मुरली में बोला है, कौन सी मुरली?
आर्य कैसेट 71
है,
आर्य कैसेट 71 में बोली
है। पहले बाप अनिश्चय में आता है या पहले बच्चे अनिश्चय में आ गए?
पहले बाप अनिश्चय में आ गए।
और बाप सन 42 में अनिश्चय में आया या सन 36 से ही अनिश्चय में आया है? सन 36 से ही
36
में अनिश्चय की बात ही नहीं है। 36 से लेकर 42 तक, हाँ 42, तब बाप अनिश्चय में आया और छोड़कर चला गया। उससे पहले ब्रह्मा बाबा भी चले गए। मूल वंशियों के लिए कहेंगे तो पहले बाप अनिश्चय में आता है कि पहले बच्चे अनिश्चय में आते हैं? पहले बाप अनिश्चय में
आता है। 36 में बोल दिया, इसलिए पूछ रहा हूँ। अनिश्चय चक्र 36 से चल रहा है, ऐसा बहुत ही
दूसरी आत्माओं के लिए
36 में प्रत्यक्ष ही नहीं हुआ।
ब्रह्मा बाबा को तो निश्चय था ही नहीं, पहले भी निश्चय नहीं था। ब्रह्मा बाबा को क्या इस बात का निश्चय हुआ कि प्रजापिता में दादा लेकर आए में भागीदार में शिव बाप आता था?
पता ही नहीं है, पता ही नहीं है। तब
तो अनिश्चय हुआ ना,
तो अनिश्चय क्यों, कैसे कैसे
क्यों नहीं अनिश्चय? निश्चय कहाँ? निश्चय में पहली बात तो बाप के ऊपर निश्चय, निश्चय में पहली बात क्या है? बाप के ऊपर निश्चय, आपने आप के ऊपर निश्चय, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय, ज्ञान के ऊपर निश्चय। तो बाप के ऊपर निश्चय नहीं, तो अनिश्चय ही तो पहले।